कलह कलेश सब दूर हुए, पाए ज्ञान तत् योग, मंगत तत् अक्षर नित गाइये, प्रभु दर्शन होए संयोग। इसमें दो चीजें आ रही हैं। पहली बात तो कलह क्लेश जितने भी हैं सब मन के अंतर्गत होते हैं, तो वो सब दूर हो जाएंगे। सबका मतलब 100% वो खत्म हो जाएंगे। ये तभी संभव है जब मन की सत्ता ही खत्म हो जाए या मन आत्मा में लीन हो जाए। इसलिए उस स्थिति के बारे में वाणी कह रही है, पाए ज्ञान तत् योग। ये कलह क्लेश किस स्थिति में आगे खत्म होंगे? ज्ञान तत्व में, जब आपकी स्थिति हो जाएगी। ज्ञान तत्व ब्रह्म को ही कहते हैं, आत्मा को कहते हैं, तो उसमें स्थिति होने के बाद ही मन के कलह क्लेश समाप्त हो सकते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं, मंगत तत् अक्षर नित गाइए, प्रभु दर्शन होए संयोग। ये जो मंत्र के अक्षर हैं ये तत् अक्षर हैं। तत् कहते हैं ब्रह्म को ही या आत्मा को। तो ये जो अक्षर हैं वो आत्म रूप ही हैं, या हम यूं कह देते हैं कि आत्मा का या ईश्वर का अवतार है। ईश्वर इस रूप में हमारे कल्याण हेतु अवतरित हुआ है। जो इसका निरंतर गायन का मतलब है मानसिक जप करेगा, तो उसको ऐसी स्थिति प्राप्त होगी, प्रभु दर्शन हो संयोग, तो उसको अंदर प्रभु का अनुभव होगा, प्रभु का अनुभव होगा। तो दो स्थितियों में भेद किया जाता है शास्त्रों में, एक ब्रह्म स्थिति और एक प्रभु का अनुभव, ठीक है ना। तो इसको इस तरह भी बयान करते हैं कि ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति। ब्रह्म तो निर्लेप है, शांत है, उसमें क्रिया का अभाव है, उसमें कोई ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं होती, ना उसका जन्म है, ना उसकी मृत्यु है, ना उसमें परिवर्तन है। लेकिन हमको सारी प्रकृति चलती हुई नजर आ रही है, हमारा जीवन भी चलता हुआ नजर आ रहा है। तो हम जब कहते हैं ये सब ईश्वर की रचना है, ईश्वर चला रहा है, इसका मतलब चलाने वाली कोई सत्ता भी तो होगी। तो जो सृष्टि को चलाने वाली सत्ता है उसको हम प्रभु कह देते हैं। प्रभु की ही तो प्रभुता होगी, उसी को ही ब्रह्म शक्ति कह देते हैं, उसी को ही रामकृष्ण परमहंस काली कहा करते थे कि जो ब्रह्म शक्ति है, जो ब्रह्म है, उसकी जो शक्ति है वही काली है। काली का काम क्या है? उत्पन्न करना, पैदा करना, फिर उसका पालन करना, फिर उसका नाश करना। तो उसी एक शक्ति को हम तीन शक्ति के रूप में जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा उत्पन्न करता है, वो रजोगुण है, विष्णु पालन करता है, वो सतोगुण है, और महेश वो नाश करता है, सृष्टि को लीन करता है। तो ये एक ही चीज है, सब तरह तरह से शास्त्रों में इनको समझाया गया है। तो रामकृष्ण परमहंस एक छोटा सा उदाहरण देते थे, वो कहते थे देखो हम सब संसारियों की स्थिति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार जब आप कठपुतली का शो देखो कोई, तो सारी कठपुतलियां आपस में लड़ती नजर आती हैं, डांस करती नजर आती हैं, पैदा होती नजर आती हैं, मरती नजर आती हैं, सारी क्रियाएं होती हैं, और लोग उसको देख के खुश होते हैं और दुखी होते हैं, ये मर गई, ये बच गई, इसने ये जीत गई, ये हार गई, करते हैं करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वास्तव में कठपुतली कुछ भी नहीं कर रही है, उसकी डोर जिसके हाथ में बंधी हुई है, जो उसका डायरेक्टर है, वही नचा रहा है उनको, वो नाच रही है, देखने वाले ये समझ रहे हैं कि ये स्वतंत्र सत्ता है, ये एक्शन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं उसी प्रकार जो माँ है, जो काली है, वो सारी सृष्टि को नचा रही है, सारी सृष्टि उसके अधीन है, किसी को कोई स्वतंत्रता सृष्टि में दी ही नहीं गई है। आपकी सृष्टि में क्या हो रहा है, चीजें पैदा हो रही हैं, लोग पैदा हो रहे हैं, वो कायम है, उनका पालन हो रहा है, अपने स्वरूप में स्थित है, और वो नाश भी हो रही है, फिर इसके अलावा कोई काम हो रहा है आपका? दुश्मन आता है आपका, गला काट के चला जाता है, ये नाश है, वो शिव का काम कर रहा है। मां के रूप में बच्चे का पालन हो रहा है, ये विष्णु का काम हो रहा है। मां के रूप में संतान की उत्पत्ति हो रही है, पौधों के रूप में वनस्पतियां पैदा हो रही हैं, ये ब्रह्मा का काम हो रहा है। तो सृष्टि में तीन ही काम तो हो रहे हैं ना, तो इन तीन शक्तियों कह लें, या इसको सतोगुण रजोगुण तमोगुण कह लें, नहीं, या केवल प्रकृति कह लें, बात एक ही है, लेकिन समझने की बात है प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जिस प्रकार धूप है, रोशनी है, या सूर्य की किरण है, क्या उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता है? वो सूर्य से ही निकल रही है, सूर्य का अंश है वो, सूर्य का अंग है वो, स्वतंत्र सत्ता नहीं है, लेकिन देखने में स्वतंत्र सत्ता नजर आती है। हम तो धूप की बातें करते ना, बड़ी तेज धूप पड़ रही है, नहीं, बड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन ईश्वर की सत्ता को भूल जाते हैं। जब बातें करते हैं तो ईश्वर की सत्ता को भूल जाते हैं, कि सत्ता तो उसी की है। तो जिस प्रकार विचार के द्वारा आपको यह पता लगता है कि सूर्य की किरण, सूर्य का उजाला, और उस किरण के द्वारा, उस उजाले के द्वारा जो संसार में वनस्पतियां पैदा हो रही हैं, सूर्य तो नहीं कर रहा पैदा उनको, हो रही हैं वो, लेकिन सूर्य के कारण ही हो रही हैं, सूर्य ना हो तो कुछ होगा क्या? तो अब बताइए, वनस्पतियों को जो पैदा हो रही हैं सारी सृष्टि में, वो सूर्य के कारण ही तो हो रही हैं, तो उसका कारणकर्ता आप सूर्य के कहोगे या उससे अलग धूप को कहोगे? किसी बालक से पूछो, ये कहेगा धूप के कारण पैदा हो रही है वनस्पतियां, वो थोड़ा कहेगा सूर्य के कारण पैदा हो रही है। लेकिन बड़ा व्यक्ति, उसका पिता कहेगा, ये तो सूर्य के कारण पैदा हो रही है, क्योंकि धूप का अस्तित्व तो अलग नहीं है, सूर्य की ही धूप है। तो उसी प्रकार जो ज्ञान तत्व है, कलह कलेश सब दूर होए पाए ज्ञान तत्व योग, सारे कलह कलेश इस मन के, इस जीव के खत्म हो जाते हैं, और इस जीव को ज्ञान तत्व का योग प्राप्त होता है, ज्ञान तत्व से ये जुड़ जाता है, अर्थात ज्ञान तत्व के साथ ये एक हो जाता है, इसी को कहते हैं ये ब्रह्माकार हो जाता है, ब्रह्म रूप ही हो जाता है, वो अद्वैत स्थिति है। उस स्थिति से फिर मन लौटकर वापस नहीं आ सकता। तो लेकिन वो एकदम से तो नहीं होता, तो जो भी इस मंत्र को का मौन होकर अंदर जाप करेगा, उसको ईश्वर जानकर, ईश्वर से कम नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो प्रेम ही नहीं होगा उसके अंदर। मैकेनिकली आप मंत्र जाप करते रहोगे, लेकिन इसमें प्रेम नहीं होगा, रूखा जाप होगा आपका, ईश्वर का भाव भी नहीं होगा आपके अंदर, इसलिए मंत्र जाप कर रहे हो, कुछ देर जाप करके बोर हो जाओगे आप। कभी बड़ा जाप किया मैंने, कुछ नतीजा तो नजर आ नहीं रहा, मन मेरा बेचैन का बेचैन है, वो संसार में भाग रहा है। यदि तुम्हारे अंदर ये भाव होता, ये मंत्र नहीं है, ये तत् अक्षर है, कि वाणी तो यही कह रही ना उसको, मंगत तत् अक्षर नित गाइए। नित का मतलब होता है रोज नहीं होता है, नित का मतलब है निरंतर। तो मन के अंदर जिस प्रकार निरंतर संसार के ख्यालात आपके अंदर चल रहे हैं, उसी प्रकार इस मंत्र के प्रति जैसे जैसे आपकी श्रद्धा गहरी होती है, जैसे जैसे इसका आपका जो इसको सिमरन करने का अभ्यास आपका परिपक्व होता है, तो एक अवस्था आ जाती है कि मंत्र आपके अंदर निरंतर चलता रहता है। और यदि आपके अंदर शास्त्र का स्वाध्याय करते करते, सत्संग श्रवण करते करते, गहरा मनन चिंतन करते करते आपके अंदर बुद्धि में विवेक आ जाए, तो वैराग भी आपके अंदर आ ही जाएगा, क्योंकि विवेक से ही वैराग की उत्पत्ति होती है। जो आपको समझ आ गई, विवेक का क्या मतलब है, आपको समझ आ गई ये संसार परिवर्तनशील है, नाशवान है, इसीलिए यह दुख रूप है, यहां हर वस्तु का परिवर्तन हो रहा है। मुझको अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम है, बहुत प्रेम है, अथाह प्रेम है, कल को मर गई वो, बताओ। जितना गहरा प्रेम तुमने किया था ना, उतना ही गहरा झटका आपको लगेगा, उतने ज्यादा दिनों तो रोते रहोगे आप, हो सकता है सुसाइड भी कर लो। तो ये जो भूल हम कर जाते हैं कि संसार में मन लगा देते हैं अपना, ईश्वर का अस्तित्व भूल जाते हैं। तो ये जो अवस्था है, ये अवस्था इसीलिए आती है क्योंकि हम जो वाणी है वो क्या कह रही है उस पर ध्यान नहीं देते। तो वाणी तो बड़ा स्पष्ट कह रही है कि मंगत तत् अक्षर नित गाइए। ये साक्षात अक्षर ईश्वर रूप है या ब्रह्म रूप है, उसका अवतरण है, उसका अवतार है। आपके सामने महाराज जी खड़े हो जाएं, तो आपके अंदर ये भाव आएगा ये मनुष्य खड़ा हो गया, या ये भाव होगा कि ईश्वर ने कृपा करके अपना दर्शन मुझे दे दिया। यदि आप गुरु के महत्व को जानते हो, गुरु के स्वरूप को जानते हो शास्त्रों के आधार पर, तब आपके अंदर यही भाव आएगा कि प्रभु बड़ी कृपा की, आपने मुझको दर्शन दे दिया। तो उसके उसकी देह का दर्शन करके भी आपके अंदर यही भाव आएगा कि मैंने ईश्वर का दर्शन किया, क्योंकि वो ईश्वर ही है, वो अवतार है। ईश्वर को तो आप इंद्रियों से नहीं देख सकते, ईश्वर को तो आप इंद्रियों से नहीं देख सकते, उसके अवतार को आप इंद्रियों से देख सकते। तो मेरी अंदर वो स्थिति ही नहीं है कि मैं ईश्वर का अनुभव कर सकूं, तो इसलिए उसके अवतार के रूप में मैं उसका दर्शन कर लेता हूं। एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने एक शिष्य से पूछ रहे थे, तुमने कभी मुझको स्वप्न में देखा है, स्वप्न में कोई बातचीत हुई है? तो वो बोले शिष्य उनके कि हाँ आपको मैंने स्वप्न में देखा है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, यदि कभी तुम मुझको स्वप्न में देखो और बातचीत हो जाए, तो समझना सच्चिदानंद से मेरी बातचीत होगी। अभी रामकृष्ण परमहंस के वर्ष है, आप इसमें पढ़ सकते हो रामकृष्ण वचनामृत। एक अवतार क्या कह रहा है, एक सदगुरु क्या कह रहा है, सोच रहा। दर्शन तो बहुत लोगों को हो जाते हैं आपको, लेकिन गुरु का दर्शन होना ये बिना प्रभु कृपा के नहीं होगा, बिना प्रभु कृपा के नहीं होगा। तो सत्पुरुषों की ये जो बातें होती हैं, इसीलिए तो पढ़ी जाती हैं, सत्पुरुषों का जीवन, उनकी जीवनी, उनके वार्तालाप, उनके डायलॉग्स, हम क्यों पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कह रहे हैं। हम तो कुछ का कुछ समझते रहते हैं, मान लिया किसी को महाजी के दर्शन हो गए, अरे ये सपने में बहुत दर्शन हो जाते हैं उनका भी हो गया तो कौन सी खास बात हो गई, ये भी कह सकता कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति ये भी तो कह सकता है। सब सैकड़ों रूप नजर आते हैं, हमारे मन का संकल्प है, महाजी भी दिखाई पड़े तो इसकी खास खास बात कौन सी होगी। बात तो उसकी ठीक है, सांसारिक दृष्टि से उसकी बात ठीक है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से उसकी बात गलत है, उन दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती। संसारी लोगों के दर्शन हो जाए और गुरु के दर्शन हो जाए, उसमें जमीन और आसमान का अंतर। संसारी लोगों के दर्शन करके तो आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि गुरु का दर्शन करके आपका कल्याण होगा, आपकी उन्नति होगी। तो प्रभु इसी प्रकार तरह तरह से हमारे ऊपर कृपा करते हैं। कब तक? जब तक कि मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं, जब तक मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं, प्रभु इसी रूप में आपको ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन मंत्र का जाप करते करते, इस सिद्ध मंत्र का जाप करते करते, वाणी का स्वाध्याय करते करते, समता विलास का स्वाध्याय करते करते, गीता तथा अन्य शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते, आपकी बुद्धि धीरे धीरे तीव्र हो जाती है, या यूं कहिए सूक्ष्म हो जाती है। आप शास्त्रों के मर्म को गहराई से समझने लायक बन जाते हो। उस समय आपको हर समय यह ख्याल रहता है कि मैं जीव हूं, इस देह और मन के बंधन में हूं। फिर आपको यह ख्याल रहता है संसार में रहते हुए कि मैं जीव हूं, इस मन और देह के बंधन में हूं। इस देह की मौत के पश्चात भी मेरा बंधन नहीं कटता, क्योंकि संस्कारों के अनुसार नई देह का निर्माण हो जाता है, और जिस मन को लेकर मैं साथ गया था नई देह में, वही मन नई देह में काम करना शुरू कर देता है। अब आप समता विलास पढ़ लो, या समता प्रकाश ग्रंथ पढ़ लो, या गीता पढ़ लो, हर जगह यही तो लिखा हुआ है, या इससे हटके कुछ लिखा हुआ है। कहते हो मुझे पूरा विश्वास है समता विलास के ऊपर, लेकिन सोच देखो आपकी कहां खड़ी हुई, अपनी सोच देखो। यदि सोच में डिफेक्ट है, या सोच में कुछ और सोच रहे हो, तो फिर ये तो बातें ही हैं आपकी। चलो मैं समता विलास समझता हूं, मुझे पक्का विश्वास है, आपकी सोच में और इसमें अंतर है, तो आप कहां समझ रहे हो? आपको होश ही नहीं है कि देह मर जाती है, मैं बच जाता हूं, मेरा मन भी बच जाता है। ये होश तो आपको हर समय बना रहना चाहिए। इसीलिए इस देह का आप इस्तेमाल करोगे, उपयोग करोगे अंतर्यामी ईश्वर को जानने के लिए, क्योंकि उसकी भी मृत्यु नहीं होती, वो तेरे संग रहता है। मन तेरे लिए आफत है, ईश्वर तेरे लिए अमृत है, दोनों में ये भेद है। ईश्वर तेरे लिए अमृत है, उसमें शांति है, उसमें ठंडक है, उसमें जीव का कल्याण है, उसमें वासना का नाश है। एक पल के लिए भी जीव वहां बेचैन नहीं हो सकता, और जब तक ये जीव मन के बंधन में है, जैसे आम सारे संसारी हैं, तब तक ये बेचैन ही बेचैन है। बड़ी अच्छी दुकान चल रही हो, सुबह उठते हो दुकान खोलनी है, कहीं ये माल लाना है, कहीं ये नुकसान तो नहीं हो जाएगा, आज पता नहीं ग्राहक आएगा नहीं आएगा, नहीं कल जैसा सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, 10 चिंताएं आपके मन में घूमने लगेंगी। ये तब होगा जबकि आपकी दुकान ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि बुद्धि अच्छी तरह से जानती है कि हर चीज यहां अस्थाई है, टेम्परेरी है, कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। तो अब बताइए, जो मन है मेरा, वो मुझको निरंतर बेचैन रखता है, चाहे बेचैनी का कारण हो या चाहे ना हो। हो सकता है आज मेरी दुकान कल से भी ज्यादा अच्छी चले, बेचैनी का कारण तो कोई नहीं है, लेकिन मन के अंदर भय रहता है, अनिश्चय की हालत बनी रहती है, क्योंकि यहां हर चीज परिवर्तनशील है, ये बुद्धि अच्छी तरह से जानती है। तो बेचैनी तो रहेगी फिर आपको, कारण ना हो तो ये भी बेचैनी रहेगी। तो इस बेचैनी से कैसे बच सकते हो? एक रास्ता है केवल, और दूसरा रास्ता है ही नहीं सारी सृष्टि में, ईश्वर विश्वास। जिसको ईश्वर पर भरोसा है उसी प्रकार भरोसा है जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस को है। वो कहते हैं यहां एक पत्ता भी बिना मां के हुक्म के नहीं हिलता। और महाजी की वाणी भी यही करी, जो हो ना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाई। रामकृष्ण परमहंस की बात में महाजी की वाणी में कोई अंतर है क्या? एक अर्थ है ना, लेकिन हमारे निश्चय में कितना बड़ा अंतर है। हम सब गर्दन हिला देंगे, नहीं साहब ये वाणी महाजी की बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन करनी में देखो, सोच में देखो, कोई विश्वास नहीं है इस वाणी पर। आपकी करनी और सोच बता रही है कि आपको इस पर विश्वास नहीं है। ये जो गैप है, मैं गर्दन हिला के हां भी कर रहा हूं बड़े जोर से और प्रैक्टिकली मुझे विश्वास है भी नहीं, तो ये बहुत बड़ा गैप नहीं है? लेकिन फिर भी मैं कहता हूं महाजी में मेरी श्रद्धा है, महाजी की वाणी में मेरी श्रद्धा है। तो ये जो श्रद्धा है ये आपके गहरे मनन से, गहरे चिंतन से ये धीरे धीरे गहरी हो जाती है, और एक दिन आपके अंदर ये विश्वास पक्का बैठ जाता है कि वास्तव में ईश्वर ही कारण करता है और कोई कारण करता नहीं। एक आपको मैं अपना एग्जाम्पल सुनाता हूं। हमारा एक डायरेक्टर था, बड़ा ही तेज तर्रार और भ्रष्ट काबिल भी। तो वो मुझको अपनी लाइन में लगाना चाहता था, तो मैं तो उसके चंगुल में फंसने वाला नहीं था, लेकिन मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारा कैबिनेट का प्रेसिडेंट होता था, ICAR का, वो भी उसके हाथों में खेलता था, तो कंप्लेंट करोगे तो किससे करोगे आप? लेकिन मैं अंदर से घबराता भी नहीं था, इतना पावरफुल डायरेक्टर होने के बाद भी मैं अंदर से घबराता नहीं था। क्यों नहीं घबराता था? कि एक निश्चय मन में बैठे हुआ था कि ईश्वर ने किसी को मेरा कुछ भी बिगाड़ने की पावर दी ही नहीं है। यदि मेरा इसकी कलम से कुछ नुकसान होता है तो वो ईश्वर की शक्ति के कारण होगा, इसके कारण नहीं हो सकता, इसको पावर ही नहीं है। ये निश्चय अंदर बैठे हुआ। तो जो बात भी होती थी मैं लिखकर फाइल पर भेज देता था, और पर्सनल कांटेक्ट हुआ तो फेस टू फेस भी कह देता था, लिमिटेड वर्ड्स में तरीके से वो तिलमिला जाता था, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके आगे कुछ कहने की। तो अब क्या था, अब ये विश्वास कहां से आया? वे हर साल एक महीना तपोभूमि में आके रहते थे, समता विलास का, वाणी का स्वाध्याय करते थे, ईश्वर का सिमरन करते थे। तो जो आदमी ईश्वर के लिए जिएगा, उसके लिए त्याग करेगा, उसके अंदर ईश्वर का विश्वास गहरा होगा या नहीं? तो सतमार्ग पर चलने के कारण आपके अंदर गहरी श्रद्धा उत्पन्न होती है, विश्वास की दृढ़ता उत्पन्न होती है। शास्त्र जो कह रहे हैं उसके बारे में बुद्धि हर वक्त सोचती रहती है। जब आपका चित्त घबराएगा तो तुरंत आपके अंदर ख्याल आ जाएगा, अरे भाई समता विलास से ये कह रही है, मैं क्यों घबरा रहा हूं? इसका मतलब मुझे गुरु पर विश्वास ही नहीं है, गुरु जो लिखकर दे रहा है उसमें विश्वास ही नहीं है मुझे, मैं सामने वाले मनुष्य को मैं दुश्मन बना ले रहा हूं अपना। अरे वो मुझे दुश्मन बनाया बात समझ में आती है, मैं उसको दुश्मन क्यों बनाऊं? मैं उसको दुश्मन बनाता हूं तो मैं तो मूर्ख हूं फिर। मुझे शास्त्र पर विश्वास कहां है, मेरा चिंतन तो संसारी आदमी तरह से, मैं भी वैसा ही व्यवहार कर रहा हूं, तो मेरा चिंतन, मेरे चिंतन में और सांसारिक व्यक्ति के चिंतन में क्या अंतर हुआ? इसीलिए सत्पुरुष के अंदर कितना गहरा विश्वास होता है, उस विश्वास में ही उसका जीवन होता है। इसीलिए अंगुली माल जैसे डाकू बुद्ध के सामने जब आते हैं तो उनका हिंसकपन खत्म हो जाता है। उनके दर्शन करके ही, उनके दो बातें सुनकर ही उसका हिंसकपन खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां इतनी गहरी शांति है, इतना गहरा विश्वास है, उसके आगे टिकता ही नहीं। मैं एकदम से लड़खड़ा जाता हूं, दो मिनट में सबको गाली देना शुरू कर दूंगा, कोसना शुरू कर दूंगा, बुराइयां करना शुरू कर दूंगा, लोगों के ऐप देखना शुरू कर दूंगा, उसका डिस्कशन शुरू कर दूंगा। मेरा ये हालत, मैं पतन की इस हालत में खड़ा होने के पश्चात भी अपने ऊपर बड़ा अहंकार करता हूं, मैं बड़ा अच्छा आदमी, तेरी मानसिक और बौद्धिक हालत तो यह है और तू अपने आप को बड़ा अच्छा आदमी भी कह रहा है। तो हम संसारी यही करते हैं, इसीलिए ये जो सतमार्ग है ये अकेला चलने वाला मार्ग है, इसमें तू है और तेरा गुरु है बस, और कुछ ऐसा कोई भी नहीं। तूने हर पल गुरु की तरफ देखना है, जब उसके अनुसार तू सोचेगा, उसके अनुसार तू करनी करेगा, समझे, तो ये जो दोष तेरे अंदर बार बार जो है वो दिखाई पड़ते हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तू लोगों का सुधार करने के लिए संसार में नहीं आया है, यदि तू सुधार करने में सफल भी हो जाता है तो ये तेरी ड्यूटी लगाई गई है ईश्वर की तरफ से, ये सुधार ईश्वर कर रहा है, जिसने ड्यूटी लगाई है वही सुधार कर रहा है, तू नहीं कर रहा। कोई अच्छा काम करने तेरे हाथ से हो रहा है तो तेरी ड्यूटी लगाई है ईश्वर ने और उसके लिए शक्ति भी दी है, ये उसकी देन है, तेरी देन नहीं है। तो जीव तो कर्तापन या अहंकार या मोह ममता का पुतला है, कर्ता तो ईश्वर ही है। तो इसीलिए जो इस विचारधारा में जीता है, इस प्रकार का चिंतन जिसका चलता रहता है, ऐसा व्यक्ति जब इस मंत्र का जाप अंदर मौन होकर करता है, उसको ही एहसास होता है कि इस मंत्र के जाप में कितना प्रेम प्रकट होता है, क्योंकि उसके लिए मंत्र का जाप नहीं है, उसके लिए ये ईश्वर का मिलन है। मन का और ईश्वर का मिलन हो रहा है, जैसे कि मैं गुरु रूप में अवतार को सामने देख रहा हूं, तो इंद्रियों का और गुरु के आकार का मिलन हो रहा है। इस मिलन का प्रभाव कहां पड़ रहा है? मन बुद्धि पे पड़ रहा है। तो मंत्र का जाप जो है वो प्रभु का मिलन है। तो ऐसे प्रेम से, ऐसे विश्वास से, ऐसे विवेक से जो व्यक्ति प्रभु का नाम सिमरन करता है या सिद्ध मंत्र का जाप करता है, तो उसके अंदर प्रभु का प्रेम प्रकट होता है। उस प्रेम का ही नाम काली है, जिसको रामकृष्ण परमहंस मां करके कहते थे। तो उसकी सत्ता अंदर है, पूरी शरीर में छाई हुई है, वही शक्ति है ब्रह्म की, वो तो ब्रह्म शक्ति है, उसका अनुभव आपको होता है। तो मंत्र शक्ति से उस ब्रह्म शक्ति का आपको अंदर अनुभव होता है, तो इसी को कहते हैं प्रभु दर्शन होए संयोग। तो फिर ये जो अंदर आपको काली है, अंदर आपको जो माँ है, ये सूर्य की किरण है, इसलिए वो भी सूर्य ही है। इसलिए पुराणों में दो चीजें आपने देखी होगी, राम है तो सीता है, कृष्ण है तो राधा है, शिव है तो पार्वती है, दो अलग अलग चीजें नहीं है, इसीलिए इसको अर्धांगनी कहा गया, आधा अंग है उसका, वो अलग नहीं है, उसका ही अंग है, इसलिए अर्ध नारीश्वर कहा गया। नारी शिव से अलग नहीं है, शिव की ही शक्ति है, वो एक ही है। तो जीव का संबंध शक्ति से बन सकता है, ब्रह्म में जीव लीन हो जाता है, ब्रह्म के साथ वो एकाकार हो जाता है, वहां दो चीजें नहीं रहती, अनुभव करने वाला अनुभव होने वाला ये दो चीजें नहीं होंगी वहां, वो पूर्ण अवस्था है, वो मोक्ष अवस्था है। इसीलिए इस एक दोहे में ये दोनों ही चीजें हैं। इस प्रकार से जब आप इसको तत् अक्षर करके समझते हैं, अर्थात ये मंत्र जो है वो ब्रह्म का अवतार है, ब्रह्म शक्ति है, साक्षात ब्रह्म शक्ति। इसीलिए उपनिषद में कहा गया नाम ब्रह्मेति उपासते, नाम को अर्थात मंत्र को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए। वैदिक काल से चली आई है, चला आया विज्ञान। इसीलिए मंत्र खुद जगदीश्वर है, इसलिए वाणी में भी आता है एक नाम गुरु करी बख्शीश पल पल सिमरे सो स्वरूप जगदीश। कितना स्पष्ट है, ये हम ही दुर्बुद्धि लोग हैं जो मंत्र करके देखते हैं उसको। इसलिए वाणी में शुरू में कहा गया कि त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाया पार। तो प्रेम तो लाइव चीज से होता है ना, जीवित वस्तु से प्रेम होता है, तो मंत्र ये ईश्वर है, जीवित वस्तु है, इसको जो ईश्वर जानकर इसका सिमरन करेगा उसके मन के अंदर प्रेम प्रकट होता है, उस प्रेम के बल पर जो है इसलिए उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसको अपार कल्याण कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं। ओम ब्रह्म सत्य।